दस ग्यारह छाछठ की दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो सबको यहाँ आना है, वहाँ जब खाली हो जाएगा तब बाप सबको ले जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पढ़ना है, स्कूल में कब कब जाना ये तो ला नहीं है। जो स्कूल में रेगुलर नहीं जाते हैं जो बच्चे, तो ला को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर फाइन डाला जाता है, फाइन भरो। तो ये भी ऊंचे से ऊंचे बेहद बाप का स्कूल है, उसमें पंक्चुअल और रेगुलर रहना चाहिए। बाबा ने तो पढ़ाई के लिए हर प्रकार का प्रबंध भी कर दिया है। बेसिक नॉलेज के लिए भी प्रबंध किया, फिर क्लास ट्रांसफर होता है हायर क्लासेस में उसके लिए भी प्रबंध कर दिया। बेसिक नॉलेज में टीचर अलग होते हैं, स्थान अलग होता है, फिर हायर क्लासेस में जाते हैं तो टीचर भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाता है। तो बाबा ने तो हर प्रकार की पढ़ाई का प्रबंध किया है ना, ऊंचे टीचर भी तैयार किए हैं और बेसिक नॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है। कब भी कहां किसके पास पढ़ाई पोस्ट से नहीं जाती है, पढ़ाई का प्रबंध किया हुआ है। ये बेहद के बाप की पढ़ाई तुम बच्चों के पास जाती है, पढ़ाने वाला एक ही है। माँ तो देखो कितने कागज खपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। बाप कहते हैं 7 दिन का कोर्स लेकर के फिर कहाँ भी रह करके पढ़ते रहो, आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। बाप कहते हैं तुम कितने चीची हो चुके हो, सतयुग में तुम्हारी निरोगी काया थी, तब तुम कितने स्वच्छ थे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो देखो क्या हाल है, ये सारा खेल भारत पर ही है, तुम ही 84 जन्मों का पार्ट बजाते हो, तुम ही माना, तुम किसे कहा जाता है। जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे होते हैं उनसे तुम कहा जाता है, सन्मुख नहीं होते हैं तो उनसे वह कहा जाता है। तो तुम 84 जन्म लेने वाले हो क्योंकि बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो। सन्मुख माना मुख के सामने बैठकर सुनते हो, हद का भी अर्थ है सन्मुख का। एक तो मुख के सामने, उसको कहते हैं सन्मुख, और दूसरा विमुख। भले मुख के सामने कोई बैठे हो लेकिन विपरीत संकल्प चलाए रहे हो तो सन्मुख होते हुए भी विमुख हो गए। तो जो सन्मुख बच्चे रहते हैं सदाकाल, कभी भी विमुख नहीं होते, क्योंकि विमुख वही होंगे जिन्होंने पास्ट के 63 जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों का आसरा लिया होगा, उन दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित हुए होंगे। तो वो संकल्पों का खून विरोधी पने का उनके अंदर आ जाता है, जो कभी भी विपरीत बुद्धि न हुए हों तो वो मेरे बच्चे हैं, उनको कभी विपरीत संकल्प आ ही नहीं सकता। तो मेरे जो सन्मुख तुम बच्चे हो वह 84 जन्म लेने वाले हो, एक जन्म भी कम नहीं, वो पक्के देवताएं बनते हैं। तुमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, कल्प कल्प तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, अपनी आत्मा का षष्ठी रूपी चक्र में कैसे कैसे पार्ट चलता है کیسے کیسے ہم 84 کے چکر میں پارٹ چلاتے ہیں, اپنی آتما کیسے کیسے گھومتی ہے, وہ تمہاری بدھی میں آتا ہے. اور پھر چکرورتی راجا بھی بنتے ہو. جتنا منن چنتن منتھن چلے گا اتنا چکرورتی راجا بنیں گے, اور جتنا جو بناویں گے اتنا اونچ پد پاویں گے. اونچ پد کا مدار قسمت پر ہوا نہیں. پڑھائی تو ٹھیک پڑھیں گے, پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں, پڑھتے تو ہیں لیکن اونچ پد نہیں پاتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہیں, پڑھتے تو ہیں بہت, جان میں بہت ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کو پڑھائی نہیں پڑھاتے. جو باپ سے لیا ہے وہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے نا. تو نیم بنا دیا, کون اونچا پد پاویں گے اور کون نیچا پد پاویں گے, کون کی آتما روپی مالا کا منکا اونچی اسٹیج میں جاوے گا اور کس کی مالا کا منکا نیچی اسٹیج میں جاوے گا. اونچی اسٹیج میں کون جاویں گے, جنہوں نے بہت سروس کی ہوگی. سیوا کے بیلنس کے آدھار پر کوئی بھی آتما کا پد آنکھ آ جاوے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ان کا اتنا اونچ پد کیوں بن گیا, ہم نے کیا کمی کر دی. نہیں, ان کا جو سیوا کا بیلنس ہے وہ سب کو دکھائی پڑے گا. کوئی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے یوگی نہیں رہے گا. یہ راجائی استھاپن ہو رہی ہے, نمبر وار پرسارتھ انوسار چھوٹے بڑے راجائیں بنیں گے. نمبر وار پد تو ہوتے رہے ہیں اور پرجا بھی انیک پرکار کی چاہیے. کیا جو ستیوگ کے پہلے جنم کی پرجا ہوگی اور جو ستیوگ کے آخری جنم کی پرجا ہوگی اس میں بھی انتر ہوگا. پہلے جنم کی پرجا سب جانی تو آتمائیں ہوں گے, کوٹ کوٹ کے پرجا میں بدھی میں گیان بھرا ہوا ہوگا. آخری جنم کی جو پرجا ہوگی اتنا گیانی نہیں ہوگی. کیوں کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ پہلے جنم کی جو پرجا بنی ہے اس نے ڈائریکٹ باپ سے پڑھائی پڑھی, اور جو ستیو کے آخری جنم کی پرجا ہوگی اس نے ڈائریکٹ باپ سے پڑھائی نہیں پڑھی. بھلے ستیو میں آ دیں گے پھر کس سے پڑھی ہے؟ ہاں, کوئی نہ کوئی آٹھویں نمبر کا نارائن ہے. جو ستیو کے آٹھویں جنم میں راجا بنتا ہے اس سے ڈائریکٹ پڑھائی پڑھیں گے. تو فرق تو پڑ جائے گا نا. یہ بے حد کی پڑھائی ہے تو دل سے پوچھنا چاہیے ہم کتنی آتماؤں کو آپ سمان سودرشن چکرداری بناتے ہیں. جتنا جان کا چکر ہماری بدھی میں چلتا ہے ایسا آپ سمان ہم نے کتنی آتماؤں کو بنایا ہے. جتنا جتنا جو بناویں گے اتنا اونچ پد پاویں گے. تمہاری ہے مایا کے ساتھ یدھ. مایا من مایا منا راون کے جو 10 سر بنتے ہیں ان میں 5 وکار مایا کے ہیں. مایا راون کہا جاتا ہے. کام کرودھ لو موہ اہنکار, وہ سر کیوں دکھائے گئے راون کے چتر میں؟ یہ 5 سر کیوں دکھائے گئے ہیں؟ بھکتی مارگ میں تو 10 سر پرشوں کے دکھائی دیتے ہیں. بابا کہتے ہیں 5 ہیں پرش مکھ اور 5 ہیں استری مکھ. کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار, یہ 5 پرش مکھ اور پرتھوی جل وایو اگنی آکاش, یہ 5 تتو ہیں پرکرتی کے استری مکھ. تو مکھ دکھائے گئے ہیں چتروں میں, چترن کیا گیا ہے. تو چرتر کرنے والے بھی کوئی 100% ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اتنی بڑی دنیا ہے تو اس میں نمبر وار کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری ہوتے ہیں یا سب ایک جیسے کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری ہوتے ہیں؟ نمبر وار ہوتے ہیں. تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو 100% کامی ہوں یا 100% کرودھی ہوں. تو جو جتنی سمپن اسٹیج کو پراپت کرتے ہیں ان وکاروں میں تو سروپری کا نام لیا جاتا ہے کامی. جیسے کہہ دیا ارجن, تو ایک ارجن کی بات ہے کیا؟ نمبر وار سبھی ارجن ہیں, سبھی پرشارتھ کا ارجن کرتے ہیں, سبھی کا اپنا شریر روپی رتھ ہے. اس شریر روپی رتھ میں پرماتما باپ سہیوگ کرتے ہیں, سیوا کا دستی سے سہیوگ دیتے ہیں, وتی سے سہیوگ دیتے ہیں, واٹا کی سیوا کرنے کا سہیوگ دیتے ہیں بچوں کو. تو بچوں کے رتھ کو چلاتے تو ہے نا, وکاروں سے لڑائی لڑنے میں بھی سہیوگ دیتے ہیں. رتھی روپی بچوں کا سارتھی ہے نا. تو ایسے رتھی روپی ارجن میں جو اول نمبر ارجن ہے اس کا گائن ہو جاتا ہے, چیتن کیا جاتا ہے, نام دیا جاتا ہے, باقی نمبر وار سمجھے جاتے ہیں. ایسے ہی نمبر وار بھیم ہے, نمبر وار نکل ہے, نمبر وار سہدیو, پانڈووں میں بھی نمبر وار ہے اور کوروں میں بھی نمبر وار ہے. ایسے نہیں کہ 100 ہی کورو تھے, بہت تھے. یادووں میں بھی نمبر وار ہے, ایسے ہی اصلوں میں بھی نمبر وار ہے. کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری الگ الگ دھرموں کے گن دھرم تو بتائے ہوئے ہیں. کون سا دھرم ہے جس میں سب سے زیادہ کام وکار بھوگا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ دیویچاری دھرم ہے اسلام. ابھی 100-150-200 برس سے کرسچنز کی سنکھیا دنیا میں بڑھ گئی ہے, لیکن اس سے پہلے کی ہزاروں ورس کی جو ہسٹری ہے اسے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان چھا گئے تھے. مسلمانوں کی سنکھیا ہمیشہ زیادہ رہی. تو اتنی پیدائش کا کارن کیا ہوا ہے؟ بے وچار. جیسے کتے کتریوں میں بہت زیادہ بے وچار ہوتا ہے تو ڈھیر سارے پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کرودھی, تو کرودھی میں بھی نمبر وار ہے. کوئی تو اول نمبر کرودھی ہوگا, اس کا پھر چترن کیا گیا. تو ابھی یہ چہرے تیار ہو رہے ہیں, چتر تیار ہو رہے ہیں چلتری کے آدھار پر. پہلے براہمنوں کی دنیا میں چتر تیار ہوتے ہیں, براہمنوں کی دنیا میں بھی کیٹاگریز ہیں. بھکتی مارگ میں 9 کڑیوں کے براہمن گائے جاتے ہیں, 9 رشیوں سے کہتے ہیں 9 گوتر ہوئے, شانڈل گوتر, برجوار گوتر وغیرہ وغیرہ ہے. 9 ہی دھرموں کی بات. ان 9 دھرموں میں جن آتما نے بہت پوترتا سے اپنا جیون بتایا نمبر وار, وہ ستیگ میں جا کر کے نارائن بنتے ہیں نمبر وار. ان کو رشی کی اپادھی دی گئی ہے. پھر ان کے کوئی بیج بھی ہیں, جنہیں آدھار کہی جاتی ہے, بیج ان کا جنم دینے والا کہا جاتا ہے پتا. بیج میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا جڑوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا ٹہنیوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ پتوں میں زیادہ طاقت تھوڑی ہوگی. جو بیج روپ آتمائیں ہیں دنیا کی وہ ہیں 9 لاکھ. 9 لاکھ میں بھی آدھے ہیں جنم لینے والے بیج اور آدھے ہیں جنم دینے والے. جو 9 لاکھ جنم لینے والے ہیں وہ کرشن کی آتما کی کیٹاگریز کے, اور جو جنم دینے والے ہیں وہ 4.5 لاکھ رام کی آتما کی کیٹاگریز کے. उन बीजों में ही फिर दो प्रकार के भाग हुए, दाई ओर के और बाई ओर के। वाम पक्षी कहे जाते हैं, वाम मार्गी। कौन सा हाथ शुभ होता है, बाया हाथ शुभ माना जाता है या दाया हाथ शुभ माना जाता है? दाया माना राइट हैंड। राइट हैंड शुभ माना जाता है। कोई काम करते हैं, दान धर्म का काम करेंगे तो कौन से हाथ से करेंगे? दाएं हाथ से। और गंदा कार्य बाएं हाथ से किया जाता है। भोजन कौन से हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ से खाना चाहिए। तो ये हाथ माने भुजाएं, भुजाएं माने मददगार। 9 लाख आत्माओं में कुछ दाई ओर की है और कुछ बाई ओर की है। जो दाई ओर की है वो है श्रेष्ठ कर्म करने वाली। कितनी है? 4.5 लाख। वो जन्म लेने वाली है या जन्म देने वाली है? हैं? पक्का पक्का बताओ। कोई बताते लेने वाली, कोई कहते देने वाली। है दाई ओर की जन्म देने वाली, वो दाई ओर की है। और जो जन्म लेने वाली है वो बाई ओर की है। अच्छा, उनमें से देवता स्वभाव की किस तरफ कौन सी है, जन्म लेने वाली या जन्म देने वाली? है जन्म देने वाली देवता स्वभाव की है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो। 9.5 लाख है ना, 9 लाख बीज है शशि के। उन 9 लाख बीजों में से 4.5 लाख है जन्म देने वाले और 4.5 लाख है जन्म लेने वाले। तो जो जन्म लेने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं स्वभाव संस्कार में, दिव्य गुणों की धारणा में, या जन्म देने वाले श्रेष्ठ हैं? देखो, दो बातें हो रही। श्रेष्ठ पावरफुल नहीं बताए, श्रेष्ठ कौन है? जन्म लेने वाले देवता स्वभाव के हैं। कृष्ण और कृष्ण की कैटेगरी की जो आत्माएं हैं वो जन्म लेने वाले हैं, और उनको जन्म देने वाले राम की कैटेगरी की आत्माएं हैं, वो जन्म देने वाली है। तो दोनों में देवता कौन है? देवता ही पार्ट कौन बजाते हैं? जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे जो बच्चे हैं वो देवी देवता का पार्ट बजाते हैं। संगम युग में भी, संगम युग में जब ब्राह्मण बनते हैं तो भी देवी देवता का पार्ट बजाते हैं, सुख देने का। और जो जन्म देने वाले हैं वो अगर देवी देवताएं बन जाए तो इस आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। उनमें से जो मुखिया है उसमें तो शिव बाप प्रवेश करते हैं। शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं तो उसके पार्ट को कहा जाएगा ना वो ब्राह्मण बनता है ना देवता बनता है। अगर वो ब्राह्मण बन जाए देवता बन जाए तो आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मेरी महिमा अलग है। क्या देवताओं की महिमा है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। और मेरी महिमा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है? नहीं। मैं सर्वगुण संपन्न देवता बन जाऊं तो उन देवताओं की रक्षा कौन करेगा? जो देवी स्वभाव के बच्चे हैं, भोले स्वभाव के बच्चे हैं, इनको कौन रक्षण करेगा? मैं 16 कला संपूर्ण नहीं बनता हूं। ये तो सूर्यवंशी बच्चे हैं, साक्षात ज्ञान सूर्य में है, सुप्रीम सोल बाप से प्रवेश करता है। शिव आता है तो पहले पहले ज्ञान किसको देता है? सूर्य को ज्ञान दिया। तो सूर्य किसको ज्ञान देगा? सूर्य चंद्रमा के बच्चों को ज्ञान पहले देगा या सूर्य सूर्य के बच्चों को ज्ञान देगा? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो पहले ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान की रोशनी की तिलमिलाहट उनमें सबसे जास्ती होती है, ज्ञान को धारण करते हैं। लेकिन ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत किसको होती है? गंदे कपड़े को होती है या स्वच्छ कपड़े को होती है? जो जन्म जन्मांतर का ज्यादा गलीज पत्ता हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, उसको ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो बाप के रुद्रमाला के बच्चे हैं, उन बच्चों को बाप पहले कलेक्ट करके ज्ञान की गहराइयां देता है, और जो विजयमाला के बच्चे हैं उनको बाद में देता है। माने जन्म देने वालों में भी दो कैटेगरीज के हैं, क्या? एक रुद्रमाला और दूसरी विजयमाला। विजयमाला के बच्चे किसको फॉलो करते हैं? सूर्य को फॉलो करते हैं या चंद्रमा को फॉलो करते हैं? ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करते हैं। वो जितना ज्ञान चंद्रमा को 100% फॉलो करने वाले होते हैं, उतनी और ब्राह्मण आत्माएं फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन वो ज्ञान सूर्य को शुरुआत में नहीं पहचान पाते। कौन? विजयमाला जी मे क्यों नहीं पहचान पाते? घाटा नहीं आ जाएगा है? ज्ञान सूर्य को पहले पहले पहचान लें तो क्या बुराई है? नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर रानियां बनती रही है, जिन रानियों ने पवित्रता के लिए जौहर किए हैं। विदेशी सेना के चुंगल में नहीं आती थी, जहां देखा कि हमारे राज्य की हार होने वाली है तो पहले से ही जौहर की प्रक्रिया तैयार रहती थी और अग्नि में कूद जाती थी। विदेशी उनके शरीर को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, विदेशियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो जो असली प्योरिटी की पावर धारण करने वाली वो जो शक्तियां हैं, जो शिव शक्तियों के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है संगम युग में, उन आत्माओं को जास्ती ज्ञान लेने की दरकार नहीं होती। वो तो है ही जन्म जन्मांतर का स्वच्छ कपड़ा। ज्यादा पतित कौन होते हैं, भारत की रानियां या भारत के राजाएं? जो भारतवासी राजाएं हुए हैं वो जन्म जन्मांतर की पतित बनते रहे, उन पर विदेशियों की छाप बहुत जास्ती पड़ी, विदेशियों में व्यभिचार फैला। तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हारे भी बाप हैं। एक एक राजा ने 100-100 हजार रानियां रखना शुरू कर दी। ये भारतवासी राजाओं की हिस्ट्री में रहा है, तो अनेक रानियां रखेंगे तो जास्ती पतित बनेंगे, जास्ती पतित पना आएगा तो बुद्धि कैसी बनेगी? जामड़ी बुद्धि बनेगी या श्रेष्ठ बुद्धि बनेगी? बुद्धि जामड़ी होती गई, इतनी तक जामड़ी बुद्धि हुई कि आपस में लड़ाई लड़ लड़ के सब राजाइयां छिन्न भिन्न हो गई, राजाई हाथ से ही चट हो गई। अभी शूटिंग हो रही है। क्या शूटिंग हो रही है? है शुरू शुरुआत में जो गीता पाठशालाएं एडवांस में चलती थी तो उसमें सब इकट्ठे होकर के बैठते थे। अभी अभी सबने अपनी अपनी डपली अपना अपना राग लापना शुरू कर दिया। अभी गीता पाठशाला में ये होने लगा, तेरी गीता पाठशाला मेरी गीता पाठशाला। यहाँ तक होते होते सब अपने अपने घर में कैसेट सुनना शुरू कर दिया। अरे गीता पाठशाला जाने होता क्या है, कैसेट ही तो सुनाई जाती है। वही बाबा की वाणी, हम अपने घर में हमारे घर में टीवी रखा हुआ है, हम भी सुन लेंगे। अरे सुन तो लेंगे, लेकिन जो संगठन की पावर है वो संगठन की पावर नहीं मिलती है अकेले बैठ के सुनने, वो वाइब्रेशन नहीं होता है। इसका हिसाब यूं लगाइए, कंपनी में जाकर के जो भट्टी करते हैं और अनुभव करते हैं वो अनुभव अपने घरों में कर पाते हैं? नहीं कर पाते। मुसलमान लोग इस बात को पक्का पक्का जानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान रहते होंगे, उनका बुद्धि का योग मक्का मदीना में ही रखा रहेगा। तो उनकी दिली लगन ये होती है कि हम अपनी जिंदगी में एक बार दो बार जरूर हज की यात्रा करेंगे और मक्का मदीना पहुंचेंगे। लक्ष्य है उनके जीवन का। भारतवासी मुसलमान होते हैं, वो अजमेर शरीफ को मक्का मदीना के बाद महत्व देते हैं। जब मौका मिलेगा तो अजमेर शरीफ उसमें जाएंगे। तो उनका मानना है कि घर में बैठ करके जो नमाज पढ़ी जाती है उससे 10 गुना फल मस्जिद में जाके पढ़ने से मिलता है। मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है उससे 10 गुना फल जामा मस्जिद में जाकर के बैठ करके पढ़ने से मिलता है। जामा मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है उससे 100 गुना फल अजमेर में जाकर के पढ़ने से मिलता है। और काबा में जाकर के पढ़ते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। तो ये तो गुरुओं ने अपनी बातें बनाई हुई है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि जहां जितना हुजूम इकट्ठा होता है एक जैसी आत्माओं का, उनका वाइब्रेशन इकट्ठा हो जाता है और उस वाइब्रेशन को तोड़ना मुश्किल होता है। वो वाइब्रेशन बहुत मुकाबला करता है दुनिया का, लेकिन आता है ये संगठन का मादा तब आता है जब प्योरिटी की पावर हो। कहेंगे कि अभी कहते थे मुसलमानों में प्योरिटी नहीं होती, वो तो विचारी होते हैं, कोई एक पत्नी से विकारी बनता है और कोई अनेक पत्नियों से भी विकारी बनता है, तो अंतर तो हो जाता है ना। ज्यादा विकारी कौन बनेगा है? अनेक पत्नियों वाला ज्यादा विकारी बनेगा। लेकिन भारतवासी राजाएं जो हैं, वो कितनी कितनी पत्नियां रखते रहे, सैकड़ों पत्नियां रखी। यथा राजा तथा प्रजा। अब प्रजा के पास इतना पैसा माल मिल्कियत इतना मान मर्तबा है नहीं जो 100-100 रानियां रखेगा, तो वो क्या करेंगे है? क्या करेंगे? अरे कोई बोलता नहीं, उनके पास इतना धन पद मान मर्तबा नहीं है, तब क्या करेंगे वो? छुप के करेंगे, चोरी चकारी से करेंगे। जब तक तलाक न दे तब तक दूसरे के साथ संबंध नहीं कर सकते। तो बताओ अंतिम जन्म में आकर के भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं या इस्लामी या मुसलमान ज्यादा नीचे गिरते हैं? भारतवासी चोरी चकारी से करते हैं, इसलिए जाति नीचे गिर जाते हैं, जामड़ी बुद्धि वाले बन जाते हैं। इसलिए उसका नाम है पाकिस्तान। कैसा स्थान? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को अपने मुकाबले क्या कहते हैं? अपने देश का तो नाम रख दिया क्या, पाक, पाकिस्तान। और हिंदुस्तान को किस नजर से देखते हैं? नापाक। पाक माना पवित्र। तो उन्होंने जो नाम रखा है वो आइडिया सही है या झूठा है? है? सही है। तो भारतवासी बहुत नीचे गिरते हैं। अभी भारतवासियों को उठाने के लिए बाप आया हुआ है, वो बता रहा है कि जितनी प्योरिटी होगी उतनी तुम्हारे अंदर यूनिटी आवेगी। प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी आ नहीं सकती। कहते हैं राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। अरे रावण को मनुष्य मिल गए और राम भगवान को बंदर मिले, ये क्या बात हुई है? क्योंकि बंदर सबसे जास्ती विविचारी बन जाता है। ये भारतवासी आत्माएं भी सबसे जास्ती विविचारी बन जाती है। इनके लिए मुरली में बोला हुआ है, आज भारत में घर घर में वैश्याल है। मुरली इतना खुला बोलती है, ये हालत है समाज की, भारतीय समाज की। बाबा तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। मुसलमानों ने भी तो शुरुआत से ही पहले ही जन्म से 2500 साल पहले भाई बहनों में शादी होती थी। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया, अभी तो 500 साल के बाद बहुत हालत नीचे गिर गई होगी। भय वर्ण संकर सब वर्ण संकर हो गए, कोई स्वच्छ जाति का नहीं रहा, कोई पक्का ब्राह्मण नहीं रहा, ब्राह्मणों का खून खराब हो गया, कोई पक्का छत्री नहीं रहा, क्योंकि अंदर अंदर चोरी हो रही है। तो चोरी होने से क्या होगा, खून खराब होता चला जाता है। तब जब ऐसा खून खराब हो जाता है तब बाप को भारत में आना पड़ता है, पहले बुद्धि रूपी खून को सुधारता है। बुद्धि रूपी खून को सुधारने के लिए जो संकल्पों का खून है उसको सुधारने के लिए ज्ञान देना पड़ता है, सच्चा ज्ञान देता है। एक ही सच्चा है और एक से ही सच्चा ज्ञान आता है, बाकी सृष्टि पर सब झूठे हैं, क्योंकि सब संग के रंग में आ जाते हैं। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जो कभी भी संग के रंग में नहीं आता है। कोई कहे वो संग के रंग में नहीं आता है, ये क्या बड़ी बात, 5000 साल परम नाम में हम भी पड़े रहे तो हम भी किसी के संग के रंग में नहीं आएंगे, ऐसे नहीं। भले वो 5000 साल सुप्रीम सोल रहता है परमधाम में, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है, पतित कन में आता है, या कोई नए देश में आ जाता है, पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है, और दुनिया का जो पतित से पतित मनुष्य है उसमें आता है, जो आखिरी जन्म में सबसे जास्ती पतित बन जाता है। उसकी यादगार क्या है? अरे उसकी यादगार भी कुछ होगी, भक्ति मार्ग में तो यादगारें हैं ना, क्या यादगार है? शंकर को भी काला दिखाई दिया, राम को भी काला दिखाई दिया, कृष्ण को भी काला दिखाई दिया, और शिवलिंग भी काला दिखाई दिया। क्यों काला दिखाया है? कहते हैं ना काला मुंह कर दिया, नाम ही रख दिया श्याम, और फिर लास्ट में बनता है सुंदर। तो जो मुखिया है वो ही श्याम हो जाएगा, तो बाकी सब कैसे हो जाएंगे, क्या होंगे? कर्मुए होंगे ना। उनकी यादगार जैनियों के मंदिर में देखने को मिलती है। जैनियों के दो प्रकार के मंदिर हैं, कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बनी हुई है, देखा हो सबने, देखना चाहिए। नीचे जो मंदिर है वो सफेद मूर्तियों का है, क्या? श्वेतांबर, अंबर माना चोला, वस्त्र। उनका शरीर रूपी वस्त्र कैसा है? श्वेत है। ब्रह्मा सरस्वती ने कैसा पार्ट बजाया, श्वेत पार्ट बजाया या काला पार्ट बजाया? है श्वेत पार्ट बजाया। तो उस समय वो अरुण के फॉलोअर से जो भी तैयार हुए वो सब श्वेतांबरी हुए, और अभी एडवांस पार्टी निकली है। एडवांस पार्टी का मुखिया तो राम वाली आत्मा, और सेना बनाती है बंदरों की। बंदर तो जितने भी जानवर दुनिया में होते हैं उनमें सबसे जास्ती विकारी माना जाता है। उन बंदरों की सेना राम लेते हैं, भगवान बाप उन बंदरों के मुहिया में प्रवेश करता है। बंदर भी दो प्रकार के होते हैं, खास करके ऐसे तो बहुत प्रकार के बंदर है लेकिन खास दो प्रकार के, कौन कौन से? काला मुंह वाला बंदर, लंबी पूंछड़ी वाला, और एक लाल मुंह वाला बंदर। लाल मुंह वाला क्रोधी बहुत होता है और काला मुंह वाला कामी बहुत होता है। ये काम और क्रोध है, यही मुख्य विकार है। तो ऐसे बंदरों को मंदिर लायक बनाने के लिए बाप आते हैं, पहले पहले उनको ज्ञान की गहराई बताते हैं, और वो ज्ञान की गहराई जब उनकी बुद्धि में बैठ जाती है तब प्रैक्टिकली उनको ये बताते हैं कि तुम्हारी माला तो है, ये माला शिव की माला तो है, रुद्रमाला तो कही जाती है, जन्म जन्मांतर के राजाएं तो बनेंगे, लेकिन ये विजय माला में अभी पिरोने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला बनके तैयार हो जाती है तो भी विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, और विकारों पर जब तक विजय नहीं हुई है तब तक प्योरिटी नहीं कही जा सकती। प्योरिटी नहीं है तो बंदरों की यूनिटी भी नहीं बन सकती। इसलिए बाप को कहना पड़ता है, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले कौन? सरेंडर्ड हैंड्स है? नहीं, सरेंडर नॉन सरेंडर की बात नहीं है। जो सन्मुख बैठ करके अंदर एक ही स्थान में बैठ करके बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं, वो अंदर वाले हैं सभी। चाहे गीता पाठशाला में है, चाहे मिनी मधुबन के संगठन में इकट्ठे होते हैं, और चाहे अपने पर्सनल संगठन बनाते हैं उनमें इकट्ठे होते हैं, लेकिन हैं वो सब घर के, बाप के घर के बच्चे। उनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने बाप के घर में जाकर के निश्चय रूपी जन्म न लिया हो। यहाँ कोई ऐसा है? है? ऐसी कोई आत्मा है जिसने बाप के घर में जाकर के जन्म न लिया हो? निश्चय बैठता है माना जन्म लिया, निश्चय उखड़ता है माना मृत्यु हो गई। तो बेसिक नॉलेज में से निश्चय उखड़ गया माने वहां से मृत्यु हो गई, और फिर आत्मा सफर करती है नया जन्म लेने के लिए। तो 9 महीने पेट में पकना पड़ता है ना, तो ये भी 9 दिन की भट्टी है, एक दिन जाने के लिए, एक दिन आने के लिए, और 7 दिन की भट्टी। अभी मुरली में भट्टी का जिक्र आया ना, 7 दिन का, बहुत गहरी बात है। जब जाते हैं तो भी ज्ञान की बातें और भगवान की बातें ही बुद्धि में रहती है, कहां जाके हमको पकना है भट्टी में। बच्चा होता है ना, जब 9 महीने पेट में पलता है तो बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। तो ऐसे यहां भी जब भट्टी करने जाते हैं तो जाने के दिन भी दुनिया भूल जाती है, भले ट्रेन में सबके साथ बैठ करके जाए या बस में बैठ के जाए, मन बुद्धि कहां लगी रहती है? जहां जाना है वहां मन बुद्धि लगी रहती है। और फिर जब 7 दिन का डोज भर के वापस आते हैं तो 9वें दिन वही ज्ञान की बातें बुद्धि में गूंजती रहती है। तो ज्ञान योग की भट्टी तो हो गई ना पक्की, और 7 दिन वहां जब रहते हैं तो भी बाहर की दुनिया से संपर्क तोड़ दिया जाता है। चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, मुरली में बोला, फोन भी नहीं कर सकते, उस घर की 4 दीवारी से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर बाहर भी निकले क्या, बच्चा 9 महीने पेट में ना पले, 5 महीने बाहर आ जाए तो गर्भ कच्चा रह जाएगा या पक्का रह जाएगा? कच्चा गर्भ हो जाएगा। کمزور آتما پیدا ہوگی، پتا نہیں زندہ رہے یا نہ رہے. تو یہ 9 دن کی بٹی پوری کرنے کے بعد نچے بدھی بن کر کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کا بچہ بنتا ہے، باپ کے گھر کا بچہ. تو اندر کا ہوا یا باہر کا ہوا؟ اندر کے بچے ہو گئے ہیں، تو باپ کے اندر کے بچے. باپ بھگوان دنیا میں جب پرتکش ہوتا ہے تو کون سے دیش سے پرتکش ہوتا ہے؟ بھارت دیش سے. بھارت دیش میں بھی اتر بھارت سے پرتکش ہوتا ہے، پوروی بھارت سے پرتکش ہوتا ہے، پچھمی بھارت سے پرتکش ہوتا ہے، یا اتری بھارت سے پرتکش ہوتا ہے؟ بھارت کیا، بھارت میں بھی بھگوان کی جنم بھومی کہاں گائی جاتی ہے؟ اتر بھارت گائی جاتی ہے. چاہے وہ شنکر جی بھگوان کے روپ میں ہو، چاہے رام بھگوان کے روپ میں ہو، چاہے کرشن بھگوان کے روپ میں ہو. رام بھگوان کی جنم بھومی ایودھیا مانی جاتی ہے، وہ بھی اتر بھارت میں. کرشن کی جنم بھومی متھرا مانی جاتی ہے، وہ بھی اتر بھارت میں. اور شنکر کا تو جنم دکھایا ہی نہیں جاتا، پھر بھی ان کا استھان کون سا مانا جاتا ہے وشیش؟ کاشی وارانسی، وہ بھی اتر بھارت میں. تو بھگوان جہاں آتا ہے، جہاں پرتیکش ہوتا ہے، اس گھر کے سب باسی بچے ہونے چاہیے نا. تو اندر کے بچے ہو گئے، ان کے لیے بولا کہ اندر والے رہ جائیں گے اور باہر والے لے جائیں گے. کیا لے جائیں گے؟ ہے کیا لے جائیں گے؟ ارے کیا لے جائیں گے؟ پد لے جائیں گے، باپ کا ورثہ لے جائیں گے. کون سا ورثہ لے جائیں گے؟ سکھ شانتی کا. ہاں، جتنی رانیوں کو، بھارت کی جو رانیاں بنتی ہیں، وجے مالا کے دانے بنتے ہیں، ان وجے مالا کے دانوں کو جتنا سکھ شانتی ملتی ہے اتنا سکھ شانتی راجاؤں کو نہیں. جنگ وہ یدھ میں جائیں گے، مار کاٹ مچاویں گے، مارو اور یا اپنے کو مروا. یدھ بھومی میں کیا ہوگا؟ خون کی ندیاں بہیں گی، تو کوئی سکھ ہوگا؟ تو اصلی سکھ کس نے بھوگا؟ رانیوں نے بھوگا. بھلے مان متوا نہیں ملتا ہے، کیا شہرت نہیں ہوتی سنسار میں رانیوں کی. جیسے مہارانا پرتاپ ہے، شیواجی مہاراج ہیں، اتنی شہرت رانیوں کی نہیں ہوئی ہے. رانیوں کی شہرت کم اور راجاؤں کی شہرت جاستی ہوئی ہے. تو مان مرتبہ کو بیٹھ کے چاٹنا ہے یا سکھ شانتی کو چاٹنا ہے؟ سکھ شانتی کو چاٹنا ہے. سکھ شانتی جیون میں بنی رہے، آتما سکھ میں رہے، شانتی رہے، اور کیا چاہیے؟ تو وجے مالا والے لے جائیں گے. کیا لے جائیں گے؟ شانتی ارتھات مکتی کا ورثہ، دکھ دردوں سے مکت. وہ آتما ایسے استھان پر اکٹھی کر دی جائیں گی جہاں سکھ اور شانتی دونوں ہوگی. 3 دھام بنیں گے انت میں، 3 دھام بنیں گے جن کا فاؤنڈیشن 36 میں ہی 37 میں ہی ڈالا گیا. میں اکیلا نہیں آتا ہوں، 3 مورتیوں کے ساتھ آتا ہوں. وہ تینوں مورتیاں شریر روپی دھام ہیں. آتما کا دھام کون سا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ شریر. تو ان شیشٹ 3 مورتیوں میں جن کی من بدھی نواس کرتی ہے، کوئی کی کسی مورتی میں کرتی ہوگی، کوئی کی کسی مورتی میں نواس کرتی ہوگی، جس کا جس سے 63 جنموں کا وشیش حساب کتاب ہوگا، 84 جنموں کا، اس مورتی میں اس کی بدھی نواس کرتی ہوگی. تو 3 سمپردائے بن گئے بھارت کے، شیو سمپردائے، ویشنو پنتھی اور برہم سماجی. برہم سماجی کس کو مانتے ہیں؟ برہما کو وشیش مانتے ہیں. ویشنو پنتھی विष्णु को विशेष मानते हैं, और शैव संप्रदाय वाले शिव अर्थात शंकर को विशेष मानते हैं। तो ये तीन धाम बन गए, शांति धाम सबसे ऊपर, सुख धाम सेकेंडरी, और थर्ड क्लास नीचे दुख धाम। ये तीन शरीर तीन धाम हो गए, दुख धाम के वासी हो। मुरली में पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं ना मुरली में, क्या पूछते हैं? अपने दिल से पूछो, सुख धाम के वासी हो, दुख धाम के वासी हो, या शांति धाम के वासी हो, कहाँ के वासी हो? तो कोई समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे हैं? आप समझ में आया? ब्राह्मणों की दुनिया में तीन कैटेगरी के खास ब्राह्मण है। कोई की बुद्धि ब्रह्मा की मूर्ति में लगी रहती है, लगी रहती है नहीं लगी रहती है। कोई की बुद्धि विष्णु की मूर्ति में लगी हुई है। उनसे कहा जाए कि एडवांस नॉलेज इतनी बढ़िया है, आप सुनते क्यों नहीं है? और सुनते हैं तो उसको धारण करके फिर एडवांस पार्टी की तरफ जाते क्यों नहीं है? तो कहेंगे जब तुम्हारी वैष्णो देवी लक्ष्मी निकल आवेगी तो हम भी निकल आवेंगे। हम तो विजय महाराज के साथ रहेंगे, हम किसी की बात मानने वाले नहीं है। तो उनकी बुद्धि कहाँ दरी हुई है? विष्णु की मूर्ति में रखी हुई है। तो तीन धाम के वासी हो गए। अब यहाँ जो प्लानिंग पार्टी है, वो तो प्लानिंग पार्टी की बुद्धि कहाँ रखी रहती है? है कहाँ रखी रहती है? कौन सी मूर्ति में? और वो मूर्ति कौन से धाम के नजदीक है? परम धाम की, शांति धाम की नजदीक है। तो पूछा और फिर जवाब भी दे दिया। क्या क्या जवाब दे दिया? कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो शांति धाम के बाहर कौन सा धर्म, कौन सा धाम आता है? शांति धाम से जब आत्माएं बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले सुख धाम में आती है। तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे, किस बात में रह जावेंगे? सुख और शांति की जो असली प्राप्ति होनी चाहिए उसमें रह जावेंगे। शान शौकत तो मिलेगा, मान मर्तबा मिलेगा, कीर्ति बहुत फैलेगी, लेकिन आत्मा को जो सुख होना चाहिए जन्म जन्मांतर का, शांति मिलनी चाहिए, शांत और सुख में जो आत्मा रहनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब ये तीनों धाम प्रैक्टिकल रूप में भी तैयार होने, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहाँ उतार लेंगे? उत्तर भारत में उतारेंगे, राजस्थान में उतारेंगे या दक्षिण भारत में उतारेंगे? हैं? कहाँ उतारेंगे शांति धाम को? हैं? राजस्थान। हाँ, जो आबू अब्बा की भूमि कही जाती है वो माउंट आबू, वहां बीज रूप आत्माएं सबसे पहले इकट्ठी होंगी। क्या बीज ही तो सबसे पुराने हैं ना? तो जो सृष्टि की आदि करता बीज पुराने हैं, वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे, जो परमधाम का निर्माण करने वाले होंगे। सबकी निसंकल्प स्टेज बनी हुई होगी वहां, और जो भी बाहर से आने वाले वहां पहुंचेंगे वो भी निसंकल्पी हो जाएंगे। जैसे अभी भी कोई कोई महसूस करते हैं कि बाबा के सामने जाने से क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। या फोन से भी बात करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हाँ, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, फोन से बात करना शुरू हो सब भूल गए। तो वाइब्रेशन का असर पड़ता है ना। तो ऐसे ही वो स्थान ऐसा बन जाएगा कि दुनिया की कैसी भी दमचक्कर मचाने वाली आत्मा हो वहां पहुंचेगी तो एकदम निसंकल्पी बन जाएगी। जो शांति का अनुभव प्रैक्टिकल जीवन में वहां पहुंच करके अनुभव करेगी वो दुनिया में अनुभव नहीं करेगी। तो शांति का अनुभव इतना ही चाहते हैं या जीवन में रहते सुख भी चाहते हैं, दुख नहीं चाहते? क्या चाहते हैं? आत्मा चाहती क्या है? शांति, बस शांति धाम में रहेंगे हैं? हाँ, नहीं चाहते क्या आप? ज्यादा जन्म 84 जन्म है ना आपके, तो 84 जन्मों में क्या चाहते हैं? सिर्फ शांति चाहते हैं। अरे सिर्फ शांति चाहते हैं तो विदेशी हो गए, नाम दे देंगे डबल विदेशी। क्या नाम दिया हुआ है? डबल विदेशी। माने ये बीज रूप आत्माएं सबसे नीचे गिरती है ना, तो सबसे जाती नीचे गिरेंगी तो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आवेंगी ना अंतिम जन्म में, तभी तो नीचे गिरेंगी। संघ के रंग में आएंगे तब तो नीचे गिरेंगे, कि ऐसे ही नीचे गिर जाएंगे। तो आखिरी जन्म में ये सारे ही बीज कहाँ गिरते हैं जाके? एकदम पतित, एकदम नीचे गिरती है जाकर। जब नीचे गिर जाते हैं तो विदेशियों से भी बदतर हो जाते हैं, इसलिए बोला डबल विदेशी। कैसे विदेशी? डबल विदेशी। लौकिक परिवार वालों से भी ठोकर मिलती है, फिर अलौकिक बेसिक परिवार वालों से भी ठोकर मिलती है। तो दोनों दुनिया से, दोनों जहान से मारे जाते हैं। 500 करोड़ की दुनिया से भी ठुकराए गए और ब्राह्मणों की दुनिया से भी ठुकराए गए। तो डबल विदेशी हुए ना, कि देशी हुए? डबल विदेशी आखिरी जन्म में जाके बनते हैं। सब जन्मों में भले नहीं बनते हो, लेकिन आखिरी जन्म में डबल विदेशी बनते हैं। उन डबल विदेशियों में से फिर चुनाव होता है। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जो माला बनती है जिसको कहते हैं अष्टदेव, जो सजाएं नहीं खाते वो पहले बनती है, उसके बाद 108 की माला बनती है। इसलिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। मतलब 12-12 के 9 ग्रुप हैं, उनमें सूर्यवंशी ग्रुप जब तैयार होगा तो पावरफुल संगठन तैयार होने पर, पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर दूसरे ग्रुप को खींचता जाएगा। पहले चंद्रवंशी ग्रुप खींचे या इस्लामवंशी ग्रुप खींचे, कोई ग्रुप खींचेगा या नहीं खींचेगा? हैं? खींचेंगे तो जो खींचेंगे उनसे माला तैयार होती जाएगी। अभी मालाएं तैयार हो रही है, देखना है हमारा मन का लेफ्टिस्ट में जा रहा है या राइटिस्ट में जा रहा है। आदि से अंत तक किसी धर्म में कन्वर्ट होने वालों में जा रहा है या न कन्वर्ट होने वालों में जा रहा है, क्योंकि माँ जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट तो नहीं होती, लेकिन दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं वो जगदम्बा के बच्चे बन जाते हैं और माँ बच्चों से प्रभावित हो जाती है। तो प्रभावित होना माना, प्रभावित माना प्रजा, तो प्रजा को आधीन रहना पड़ता है या स्वाधीन होने से काम चलता है? आधीन रहना पड़ता है। माताओं का स्वभाव ये होता है, बच्चियां हैं तो बाप के कंट्रोल में आधीन है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन है, माँ बन जाती है बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के अधीन हो जाती है। ये भारतीय स्त्रियों का स्वभाव है। तो कहा जाता है चंद्रवंश, ये दो वंशों से नई दुनिया की शुरुआत होती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अभी रुद्रमाला बन गई या नहीं बन गई है, या बनने की शुरुआत हो रही है? है, बन रही है, बनने की शुरुआत हो रही है। होते होते पूरी रुद्रमाला तैयार हो जाएगी, और जब रुद्रमाला तैयार हो जाएगी तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। प्रत्यक्षता कब होगी? प्योरिटी से ही सारे काम होते हैं, کیا دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے پیورٹی سے ہوتے ہیں. ستیگ میں پیورٹی کے کارن پرکرتی سب کچھ مہیا کرے گی, کوئی کارخانہ نہیں ہوگا. ایروپلین بنانے کے کارخانے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کارخانے نہیں ہوں گے تو اوپر اڑیں گے کیسے ویمانوں میں؟ ہے سنکل شکتی کام, ابھی نہیں سنکل شکتی کام کرتی ہے. نہیں پرکرتی ہی ایسے جیوڑے تیار کرے گی جو تمہارے ویمان بن جائیں گے. ایسے ایسے پکشی ہوں گے, پرائیویٹ پکشی بھی ہوں گے. جیسے بڑے بڑے آدمیوں کے آج کل پرائیویٹ ویمان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے. ہاں پھر اشارہ کیا ادھر تو ادھر گھوم گئے, ادھر کیا تو ادھر گھوم گئے, اوپر اڑو تو اوپر اڑے, نیچے بیٹھ جاؤ تو نیچے آ جائیں. اور کیسے ہوں گے؟ ایکسیڈنٹ پروف. آج تو ویمانوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا رہتا ہے, ڈر لگا رہتا ہے, اتنے اونچے اڑ رہے ہیں پتا نہیں کب آگ لگ جائے, کیا ہو جائے, چوہا ہوا گھس جائے, تار آر کاٹ دے. یہ ہوگا تو سب کچھ, لیکن کون سی پاور کے آدھار پر ہوگا؟ پیورٹی کی پاور کے آدھار پر ہوگا. لیکن پیورٹی کی پاور رودرمالا کے منکوں میں دکھائی نہیں دے رہی؟ دکھائی دے رہی, اپنے اپنے اندر دکھائی دے رہی ہے, نہیں دے رہی, ہتاش ہو رہے ہیں. ہتاش ہونے کی بات نہیں ہے, سہیوگ سے دنیا کے سارے کام بن جاتے ہیں. کیا لنگڑا چلاتا رہے کہ میں تو لنگڑا ہوں, کیسے ندی پار کروں گا, یہ تو بہت بھاری وشے ویتن ندی ہے, میں لنگڑا کیسے پار کروں گا؟ تو کیا کرنا چاہیے لنگڑے کو؟ اندھے بھی تو دنیا میں بہت ہیں, تو ان اندھوں کا آسرا لے لینا چاہیے, سہیوگ لے لینا چاہیے نا. کب سے اب چمانی میں بابا نے بولا ہوا ہے کہ وجے مالا کا آواہن کرو, کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ اب تک بھی بدھی کہیں کنسنٹریٹ نہیں ہوئی. وجے مالا کا آواہن ہوگا اور کام پورا ہو جائے گا. پیوریٹی والی جو آتمائیں ہیں وہ ایکسٹرا سہیوگ دے دیں گی. اس وجے مالا کے ہیڈس کے نکلتے ہی کیا مثال دیا ہے, ویسے شہد کی مکھیوں کی رانی نکلتی ہے تو پیچھے پیچھے ساری مکھیوں کا ہجوم جاتا ہے. تو اتنی ڈھیر ساری برہما کماریاں اگر نکل پڑیں گی ایڈوانس پارٹی میں تو پرتکشتا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. تو جو کرنا ہے تو کرتے نہیں, کیا کرتے ہیں؟ جو کمار اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں گیان میں, وہ رودرمالا کے منکوں میں ہی شادیاں سچائے رہے ہیں. ان کی بدھی رودرمالا میں ہی لگی چلی جا رہی ہے. تو مسلمان ہوئے یا دیوی دیوتا سناتن دھرم کے ہوئے؟ مسلمان ہوئے. مسلمانوں میں بھائی بہنوں میں شادی ہوتی ہے. بابا تو کہتے ہیں تم بچے آتما آتما کیا ہو, بھائی بھائی ہو. رودرمالا کے منکوں کو تو اس اسٹیج پر پہنچنا ہے, یا ایسی آتم کی اسٹیج دھارن کرنی ہے جو آپس میں آتما آتما بھائی بھائی دکھائی دے, انوبھو میں آئے, بھائی بہن بھی دیکھنے میں نہ آوے. بدھی کا یوگ اگر آپس میں ایک دوسرے میں جاتا ہے تو اس کا مطلب بدھرمی بن رہے ہیں یا سودھرمی بن رہے ہیں؟ کیا بن رہے ہیں؟ بدھرمی بن رہے. بھلے پتی پتی نہیں کیوں نہ ہو, ان کے لیے بھی بول دیا ہے مرلی میں کہ یہاں کی کوئی چیز اس دنیا کی نئی دنیا میں نہیں جائے گی. اس دنیا کے جو جوڑے ہیں وہ بھی نئی دنیا میں نہیں جائے گی. جو یہاں پتی پتنی ہے وہ وہاں پتی پتنی بن کر کے نہیں جائیں گے, وہ بھی چینج ہو جائیں گے. تو جب بتا دیا کہ وہ چینج ہونا ہی ہے تو آپس میں بدھیوں کیوں لگ رہا ہے؟ اٹیچمنٹ کیوں رکھنا؟ اگر اٹیچمنٹ رکھیں گے تو کیا ثابت ہوگا؟ کون سے دھرم میں جائیں گے؟ ودھرمی ثابت ہو جائے گا. ابھی کیا کرنا ہے؟ ایک شیو بابا
دوسرا
دوسرا.